ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज के इस संध्या जागृति कार्यक्रम में 20 नवंबर के मंगलवार के दोपहर के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और आप सबका हृदय से धन्यवाद है। हरे कृष्णा। क्योंकि ऐसे इंग्लिश में कहावत है, दोज पीपल हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर, जो साथ में आकर प्रार्थना करते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, उनका साथ जो है वो चिरंतन हो जाता है। साथ में आकर हम लोग बहुत काम करते हैं, परिवार चलाते हैं, नौकरी करते हैं और कोई सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य करने से हम हमेशा साथ रहेंगे ऐसा गारंटी रहता नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में जब हम एकत्र आते हैं तो हमारा साथ चिरंतन हो जाता है। जन्म जन्मांतर के बाद भी हम लोग साथ रहते हैं। जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में बताते हैं, जब दो से अधिक लोग साथ में आते हैं वो मेरे नाम पुकारते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ, वहीं मैं रहता हूँ और ही मेरा संग मिलता है लोगों को। नारद मुनि भी वही कहते हैं, नारद मुनि को भगवान यही कहते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ पर मेरे भक्त एकत्र होकर मुझे पुकारते हैं वहीं मैं रहता हूँ। इसलिए जब हम साथ में बैठकर कीर्तन करते हैं या भगवान के नाम को पुकारते हैं तुरंत मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है और मन में प्रसन्नता आ जाती है, आनंद आ जाता है, प्रेम आ जाता है। क्योंकि जैसे कोई पेड़ है उसमें बहुत सारे पंछी बैठे हैं, कोई आवाज़ करेगा सब पंछी उड़ जाते हैं, है ना, फटाका फूट गया दिवाली का तो तुरंत सब पंछी उड़ जाते हैं। उसी तरह से हमारे देह रूपी पेड़ पर जितने पाप के पंछी बैठे हैं, जैसे ही भगवान का नाम का ध्वनि होता है सारे पाप के पंछी उड़ जाते हैं। और जो भी हमारे जीवन में चिंता है, परेशानी है, दुख है, वो सब उन पाप के पंछियों की वजह से होता है। जब तक वो पाप के पंछी आप पर बैठे हुए हैं तब तक परेशानी, चिंता, दुख, तनाव, वैफल्य, विफलता, फ्रस्ट्रेशन, हाँ, डिप्रेशन, ये सब जो है ना, ये सब लगा रहता है जीवन में। जैसे ही भक्तों का संग मिलता है और भक्तों के संग में भगवान की सेवा करने का मौका मिलता है, तुरंत सारे पंछी उड़ जाते हैं और अंदर की जो ज्वाला है आनंद की, वो बाहर निकलती है। अभी कैसा है, ज्वाला अंदर है, बहुत सारे राख जमा हो गए ऊपर, इसलिए उसका प्रकाश और उष्णता जो है वो बाहर नज़र नहीं आती है, वो दब गई है इस राख के वजन से। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक नली को लेते हैं और उसको फुंकर मारते हैं तो क्या होता है, सारी राख जो है वो उड़ जाती है। और राख उड़ने से क्या होता है, अग्नि जो है वो प्रज्वलित होता है, बाहर आता है फिर दोबारा। तो भक्ति की प्रक्रिया जो है उसका मतलब क्या है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम विद्धाति कामान, का मतलब है उसका कोई बाहर से अंदर इम्पोर्ट नहीं करना है कुछ चीज़ को, जो अंदर है उसको जगाना है बस, कोई बाहर से वस्तु लगा अंदर डालना नहीं है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं है, जो भी है क्या कहते हैं जीसस क्राइस्ट, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, भगवान का जो राज्य है, भगवान का जो देश है वो आपके हृदय के अंदर है, क्योंकि आपके हृदय के अंदर भगवान है, जहाँ भगवान है वहाँ पर उनका राज्य है। तो बाहर से आपको भगवान के राज्य को अंदर इम्पोर्ट नहीं करना है, जो अंदर राज्य है उसको प्रकट करना है, जगाना है, जागरूक करना है उसको। कितनी सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई मैं सिद्धांत की कोई बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, एकदम सिंपल। क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी जिन लोगों के सामने बैठ के बोल रहे थे वो भी बहुत सिंपल लोग थे, कोई ऐसे हाई फाई पढ़े लिखे ऐसे कोई बड़े बड़े लोग नहीं थे, बहुत सिंपल गाँव के लोग थे। इसलिए उनको समझाने के लिए उन्होंने सिंपल भाषा में बताया कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उस भगवान के राज्य को बाहर मत ढूंढो, वो हृदय के अंदर ही है। हाँ, क्या बोलते हैं, कुटे शोदिशी रामेश्वर अन, कुटे शोदिशी काशी, हाँ, हृदयातिल भगवंत राहिला हृदयातू न उपासी है, बोलते ना मराठी में भजन, बोलते ना भावगीत, क्या मतलब है उसका, सब जगह भटका उसको, भगवान नहीं मिले उसको। कैसे मिलेंगे जब तक यहाँ के भगवान को नहीं जगाएंगे, तो बाहर दिखाई कैसे पड़ेंगे वो, जब यहाँ है ऐसे मालूम पड़ेगा तो सब जगह है ऐसा मालूम पड़ेगा, लेकिन यहाँ है ये पता नहीं है तो सब जगह है फिर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए यहाँ के भगवान को जगाने के लिए ये बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम, रोज बोलते ना, रोज बोलते हैं। हाँ, 98 से अभी 2012 खत्म होने को आया, अभी भी चल रहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम। हॉस्पिटल का बच्चा बच्चा जानता है इस मंत्र को, मतलब क्या उसका, जब भगवान के नाम का जप करते हैं तो जो हृदय पर जो राख पड़ी हुई ना वो सब उड़ जाती है, वो अंदर का जो अपना असली रूप है वो प्रकट होता है, सब आईना साफ हो जाता है और जो देख रहे हैं जो सच्चाई है वो दिखाई पड़ती है। हाँ, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये मालूम पड़ता है। वो लग रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, अभी मैं आदमी हूँ, इंडियन हूँ, बुढ़ा हूँ, जवान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ, ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सब मैं नहीं हूँ, मैं उसका दास हूँ। हाँ, जीवेर स्वरूप होए नित्य नित्यर कृष्ण दास, कृष्णेर नित्य दास, भगवान के हम सेवक हैं, ये हम जान पाते हैं जब भगवान का नाम लेते हैं। उसके लिए कोई बड़ा बड़ा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई PhD करने की जरूरत नहीं है। रिक्शा वाला है ना अपना वृंदावन का, बोलेगा साहब कहाँ जाना है, बोले बांके बिहारी मंदिर जाना है, बोले कहाँ से आए हो साहब आप, बोले दिल्ली से आए हो, वो बताएगा आपको कि पुनर्जन्म होता है और हम कैसे भगवान के दास हैं, और राधे राधे बोलेगा बीच में, रास्ते में कोई आएगा तो राधे राधे हट जाओ बोलेगा, फिर रक्षा चलाएगा, सब बताएगा आपको भगवान कैसे हैं, ठाकुर जी सब कुछ है, हम उसी के भरोसे रहते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े पंडितों को पता नहीं है, वो रिक्शा वालों को पता है वृंदावन के, वो जानता है ये मालिक वही है, ठाकुर जी सब बिहारी सब करते हैं, सबको संभालते हैं, हम उन्हीं के भरोसे रहते हैं। मुंबई का आदमी करोड़ों रुपए लेके भी परेशान है, दुखी है, और रिक्शा वाला बोलता है सब भगवान के भरोसे, सब चल रहा है। क्यों अंतर है, यहाँ पर डिफरेंस है उसका, यहाँ पर जो चल रहा है ना केमिस्ट्री, जो रसायन यहाँ पर घुस रहा है उसकी वजह से सब परिणाम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि करोड़ों का धन संपत्ति, लंबी लंबी डिग्रियाँ, अच्छे अच्छे ब्राह्मण के या बड़े बड़े कुल के अंदर जन्म लेना, या बहुत सुंदर शरीर होना, हाँ, किसी के लंबे बाल हैं, किसी के नीली आँखें हैं, किसी का गोरा शरीर है, बहुत ताकत है उसके अंदर, बहुत बल है, ये सब कुछ होने पर खुशी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। नहीं तो आज दुनिया में जो 1% होगा शायद, अब्जावधि लोग, अब्जावधि पैसा है उनके पास, मतलब दुनिया के अमीर आदमी, ऐसे उनके लिस्ट है, 1000 लोगों का लिस्ट है, उनके पास अब्जो रुपए, अब्जो डॉलर्स है उनके पास, वो सब लोग रिटायर हो चुके होते, अभी इतनी खुशी मिल रही है तो और खुशी की जरूरत क्या है, बस करो अभी काम बंद करो और घर में बैठो, इतना पैसा है, खुशी आ रही है पैसे की वजह से, ऐसा होता। लेकिन आपको दिखता है क्या कोई अनिल अंबानी बैठा है आराम से हवा खा रहा है, ऐसा नहीं, मुकेश अंबानी, हाँ, अजीज प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल बैठे हैं कभी, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी बोले मिलेगा आगे जाके। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना धारा धन होने पर भी खुशी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं होती है। आप अगर मिस्टर यूनिवर्स होंगे और मिस यूनिवर्स होंगे, बहुत सुंदर शरीर होगा आपका, तो भी खुशी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, हाँ, सब जगह आपका नाम होगा, लेकिन खुशी मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि खुशी जो है वो इन चीज़ों में नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलती है उसमें। सिंपल है ना। आम के पेड़ पे अगर आपको संतरा चाहिए तो मिलेगा क्या? बोलेंगे आधा किलोमीटर तक इसका फैला हुआ है आम, हो सकता है वो कोने में संतरा होगा, उधर ढूंढ लो। नहीं, वो सब ढूंढ लिया उधर से, तो फिर आप ईस्ट में ढूंढो, इस तरफ होगा शायद। आप ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, किधर भी जाओ, हर एक डाली में जाओ, आपको आम के झाड़ पे केवल आम ही मिलेगा, संतरा नहीं मिलेगा। और संतरे के झाड़ में जाओगे तो वहाँ पर आम नहीं मिलेगा, संतरा ही मिलेगा। और करेले के झाड़ में जाओगे तो क्या मिलेगा? करेला ही मिलेगा, ध्यान रखना। उस तरह से जिसमें खुशी नहीं है उसमें खुशी ढूंढने से खुशी नहीं मिलने वाली है। सिंपल, एकदम बहुत सिंपल चीज़ है ये। इसलिए अगर शास्त्र में लिखा है कि धन में खुशी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, शरीर को सुंदर बनाने से खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, कितना भी कोशिश करो, कितना मेकअप करो, ब्यूटी पार्लर जाओ, हजारों खर्च करो, पैर बाल को सीधा करो, बाल को टेढ़ा करो, बाल को आड़ा करो, कुछ भी करो, उसके बाल उड़ गए, वो बाल के क्लिनिक में जाओ, वहाँ पर बाल नए लगा के लो, वो दिखाते ना फोटो, ऐसा ऐसा फोटो दिखाते हैं, पहले टक्कल, उसके बाद थोड़ा बाल, उसके बाद पूरा बाल, लेकिन क्या उसके एंड में ऐसा लिखा है खुशी, ऐसा लिखा है क्या? नहीं है खुशी उधर, एंड में खुशी नहीं है, क्योंकि जो लगाए वो बाल है वो भी आगे जाने वाले हैं, और जो है वो भी काले सफ़ेद होने वाले हैं। इसलिए जिस चीज़ में खुशी नहीं है वहाँ पर खुशी ढूंढने से खुशी नहीं मिलने वाली है। और हम लोग, दुनिया के लोग, दुर्भाग्य से, गलती से, मिस्टेक से, हाँ, तकदीर बिगड़ने से खुशी को वही ढूंढते हैं जहाँ वो नहीं मिलने वाली है। और जहाँ मिलती है वहाँ पर मिलेगी ऐसा हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हम ढूंढते नहीं हैं। जो चाबी हमारे गुम होती है ना, हम लोग सब जगह ढूंढते हैं लेकिन अपने जेब में देखते नहीं है कि नहीं, सब ड्रावर टेबल सब कबर्ड सब खोल के देखते हैं, बदलते रहे जेब में थी वो। जेब में जहाँ चाबी थी वहाँ छोड़कर सब जगह ढूंढते हैं तो क्या मिल सकती है वो? पूरा घर 5 बार ढूंढा, सब उल्टा सुलटा किया लेकिन नहीं मिली, क्योंकि जहाँ थी वहाँ ढूंढेंगे तो मिलेगी, जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढ के कैसे मिलेगी? होता है ना घर में कभी आपके, बहुत देर ढूंढे रहते लेकिन मिलता नहीं कुछ। उसी तरह से खुशी कहाँ मिलती है? जहाँ भगवान का नाम होता है वहीं खुशी मिलती है। लेकिन हमारा अभी तक विश्वास नहीं इस बात पर। आपको लगता है नहीं अभी पैसा ज़्यादा आएगा तो मिलेगी खुशी, ये छोटा घर से नया घर आएगा ना, एक बार माड़ा का लॉटरी लग गया तो मिलेगी खुशी, ऐसा लगता है आपको? माड़ा का लॉटरी लग गया या तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 300 घर मिलेंगे, उस पर नंबर लग गया तो खुशी ही खुशी ऐसा लगेगा, कितना झोपड़े के भाड़े में झोपड़े में रहेंगे। लेकिन इन चीज़ों में खुशी नहीं है, ये मिलने पर भी नहीं है और ना होने पर भी नहीं है। लेकिन जहाँ भगवान का नाम है वहाँ पर आपको हमेशा खुशी मिलेगी। फिर आप क्रिश्चियन होंगे नो प्रॉब्लम, मुसलमान होंगे नो प्रॉब्लम, हिंदू होंगे नो प्रॉब्लम, सिख होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, बहाई होंगे, जू होंगे, कुछ भी होंगे, भगवान का नाम लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। क्रोसिन की गोली मुसलमान खाएगा, हिंदू खाएगा, काला खाएगा, गोरा खाएगा, बच्चा खाएगा, बड़ा खाएगा, हाँ, सुंदर आदमी खाएगा, कुरूप आदमी खाएगा, बसई वाला खाएगा, बम्बई वाला खाएगा, सबका बुखार उतरेगा। क्रोसिन गोली भेदभाव नहीं करते ना किसी के ऊपर, बोले खाली मुसलमान के ऊपर ही चलाऊंगी, बाकी किसका और असर नहीं करूंगी, ऐसा होता है क्या कभी? वो एक ही फार्मेसी से एक ही दवा लेता है, मुसलमान हिंदू सब खाते हैं, सबका बुखार कम हो जाता है। उसी तरह से भगवान का नाम कोई भी जीव लेगा तो उसको शांति और आनंद मिलने वाला है 100%, कोई भेदभाव नहीं उसके अंदर। श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास के साथ जो भगवान का नाम लेगा वो निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति करेगा। फिर उसके बाद धन नहीं होगा या धन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक बहुत अमीर आदमी बिजनेसमैन बनिया इस साधु के पास में आया, बोला साधु जी महाराज है, पैसा है, सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, बड़ा घर है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सब कुछ है, मतलब कुछ परिवार बड़ा है, बहुत पोते हैं, लड़की लड़का सबकी शादी हो चुकी है, हर चीज़ है, लेकिन साहब चिंता नहीं छूटती है मन की। फिर भी और आपको देखता हूँ, ना आपके पास प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, ना बिजनेस है, ना बीवी है, ना बच्चा है, ना घर है आपके पास, हमारे पास जो है उसमें से कुछ भी नहीं है, फिर भी आप एकदम शांत लगते हो, एकदम निश्चिंत लगते हो, आपके चेहरे में चिंता की एक लकीर भी दिखती नहीं मेरे को कभी। क्या रहस्य क्या है इसका, क्या राज क्या है उसका? मेरे पास सब कुछ होने पर मैं चिंतित और आपके पास कुछ भी न होने पर आप खुश, इसका राज क्या है? तो साधु महाराज बोले, अरे पगले तू मुझे सवाल कर रहा है, तुझे ये नहीं पता कि तू 7 दिन के बाद मरने वाला है? सवाल करना छोड़ दे, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में सोच कि तू 7 दिन के बाद मरने वाला है। बोला अच्छा, वो भी सवाल भूल गया अपना, क्या सवाल पूछने को आया था? अरे अच्छा, मर रहा हूँ, क्या करूँ सार भाई, जाओ तुम 7 दिन के बाद लौट के आओ मुझे मिलने के लिए। तभी उसको मालूम पड़ा कि साधु ने बोला है तो मैं मर जाऊँगा। तो सबको मिला, वो सबको मिला, थैंक यू सॉरी सब बोला, सब प्रॉपर्टी सबके नाम पे कर दिया, इधर का प्रॉपर्टी सब कुछ, सब डिवाइड सब दे दिया उसने सबको, क्योंकि जाना है ना, अभी क्या कर जाना है, जाने के पहले प्लान तो करना ही है। जिसको सॉरी बोलना था सॉरी बोल दिया, जिसको थैंक यू बोलना था थैंक यू बोल दिया, जिसको मिलना था उसको मिल लिया, जो जो जिसके जिसके नाम पे करने का था, कोई दान देने का था, कोई किसी को देने का था, अनाथ आश्रम में कोई मंदिर में देने का था, वो सब कुछ ख़त्म करके 7वें दिन वो साधु के पास लौट के आया। साधु महाराज, आपने कहा था 7 दिन के बाद में आपकी मृत्यु होगी, अभी मैं आ गया हूँ। बोला अभी कैसा लगता है आपको? बोला बहुत अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं, अभी चिंता विंता सब दूर हो गई है, अभी मेरे एकदम मन हल्का लगता है, अभी मन में कोई चिंता किंतु कोई प्रश्न ही नहीं, अभी इतना आनंद लग रहा है, एकदम हल्का हल्का लग रहा है। वो बोलता है, साधु बोलते हैं कि तू कुछ मरने वाला नहीं था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है जो तुमने मुझे 7 दिन पहले पूछा था ना, कि तुम इतने शांत कैसे दिखते हो, चिंता से फ्री, उसका प्रश्न का उत्तर ये है क्योंकि जब तक तुमने वो सारी चीज़ों को पकड़ के रखा है जिसमें खुशी नहीं है, पकड़ के रखा है तुमने, तब तक खुशी तुमको नहीं मिलेगी। जब तुमने अभी छोड़ दिया है उसको, आपके पास खुशी ही खुशी है, शांति ही शांति है, और चिंता तो आपका नाम ही निशान नहीं उसका। बोले हम लोग साधु लोग ऐसे रहते हैं हमेशा, इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। एक और बात उसने बताया कि अभी तुमको कैसा लग रहा है? ना हल्का लग रहा है एकदम। क्यों लग रहा है? तुम जाना है ना, अभी कुछ है ही नहीं इधर का। बोले हम लोग भी किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहते हैं, किसी भी समय जाने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमेशा निश्चिंत रहते हैं। और आप लोग हमेशा यहाँ रहने का प्लानिंग बनाते रहते हो, इसलिए दुखी रहते हो, यहाँ बनने से फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर वैसा नहीं है, फिर वैसा नहीं है, कभी बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, पैसा नहीं है, कभी लोन है, कभी ये है, कभी गाड़ी नहीं मिल रही है, हाँ सब कुछ चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है, तो चिंता बनी हुई है, शांति है ही नहीं, संतुष्टि समाधान है ही नहीं, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने उसका मैन्युफैक्चरिंग किया ही नहीं है, वो खेती यहाँ पर उन्हें बनाई नहीं है, समाधान की खेती, उस खेती में समाधान का बीज डालो, बहुत समाधान आएगा उसके अंदर, संतुष्टि आ लो, फसल काट लो, खा लो उसको, संतुष्ट रहो, ऐसा नहीं है इधर। इधर केवल फसल होती है चिंता की, दुख की, हाँ दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये दुनिया जो मैंने बनाई है ये बड़ा दुख का एक घर है, दुख आलय मतलब दुख का घर है, और इसमें केवल अशांति रहती है, कुछ निश्चित नहीं है, आज है तो कल नहीं। देखो ना आप, अभी 6 महीने पहले, 6 साल पहले, 18 साल पहले आप किधर थे, आज कहाँ हूँ, सब चेंज हो गया, एवरीथिंग चेंज। पिताजी थे अभी नहीं रहे, माताजी थे अभी नहीं रहे, नेबर चेंज, घर चेंज, जॉब चेंज, फैमिली चेंज, आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड के पास गए, सब पूरा नया, सब सेट पूरा नया, कुछ टिकता ही नहीं है। और 10 साल का पहले फोटो निकाल के तो अरे बहुत सारे बाल थे, अभी किधर गए, कब खत्म हो गए, अरे थे लेकिन बहुत सारे, लेकिन अभी तो सफ़ेद हो गए, सब चेंज। तो अशाश्वतम मतलब कुछ निश्चित नहीं है, आज है तो कल रहने का गारंटी नहीं है उसके अंदर। आज जवानी है, बहुत शक्ति है, जोश है, बहुत उत्साह है, कल शक्तिहीन हो गए, हाँ चलने को नहीं हो रहा है, 2 आदमी का सपोर्ट चाहिए, दवाई खाना पड़ता है, 22 गोली खाना पड़ता है, खांसी आ रही है, दम लग रहा है, चलने की शक्ति नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, आज जीवन है तो कल नहीं है, इसलिए इसका उपाय क्या है? भगवान की सेवा। अगर भगवान की सेवा में आप लोगोगे तो आज भी खुशी है, कल भी रहेगी और परसों भी थी, परसों भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ये एक अगर आपको निश्चित कुछ चीज़ चाहिए जीवन में तो आपके पास मिल सकती है। जो भगवान की सेवा में कल था वो भी खुश था, जो भगवान की सेवा में आज है वो भी खुश मिलेगा आपको, और जो कल भगवान की सेवा में है वो भी कल भी खुश रहेगा, उसकी भी गारंटी रहती है उसको, क्योंकि उसने परसों भी किया था, कल भी किया था, आज भी कर रहा है, और तीनों दिन उसको एक ही एक्सपीरियंस मिला है, तो विश्वास हो गया कि कल भी करूँगा तो मुझे मिलेगा, गारंटी है उसको। आज बटन दबाया तो लाइट लगी, कल दबाया तो भी लगी थी, तो इसलिए कल दबाऊंगा तो भी चलेगी, होता है ना आपका विश्वास होता है ना। मैंने बोला भाई पंखा बंद करके आओ, ताकि बराबर बंद करके आया ना वही बटन को, कल भी वही बटन था, जो बंद किया तो बंद हो गया था, आज भी बंद किया तो बंद हो गया, वो सेम शाश्वत है ना वो, इसलिए। उसी तरह से भगवान की सेवा करने से भक्तों के संग में हमें हमेशा चिंता के फ्री वातावरण में हम रह सकते हैं और खुशी का अनुभव जो हमको चाहिए सबको। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको खुशी का अनुभव नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए खुशी नहीं चाहिए, ऐसा कोई है? कोई मिलेगा वो ढूंढ के ऐसा दुनिया में ढूंढ के ऐसा आदमी निकालो जो बोलेगा मुझे खुशी नहीं चाहिए, मुझे दुख बहुत पसंद है और हमेशा मुझे दुख में ही रखो, देखो कि मैं दुखी रहूं बस, ऐसा कोई है क्या आदमी? कोई नहीं। आनंदमयोभ्यासात, ऐसा हमारा व्याख्या भगवान ने किया है। भगवान कहते हैं कि हर एक जीव जो है वो खुशी की खोज में रहता है, आनंद को ढूंढते रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंदमय है, और वो अगर जागरूक करना है तो भक्तों के संग में भगवान का नाम का पुकारना और भक्तों के संग में भगवान की सेवा करना। अभी गोवर्धन पूजा आ रही है, हाँ वैसे तो हो गई वो 14 तारीख को तिथि के अनुसार, अस्पताल में सब लोग लौट के आएंगे यात्रा से, तो हम लोग 28 तारीख को उसको मनाने वाले हैं। सबको पता है कथा, भगवान ने इंद्र की पूजा कैंसिल कर दिया और पिताजी को बताया इनका पूजा मत करो, गोवर्धन की पूजा करो, तो पापा ने फिर बच्चे की जिद मानी और चेंज कर दिया, और भगवान की इच्छा से, बालक भगवान की इच्छा से क्या किया, इंद्र के बदले में गोवर्धन की पूजा किया। और कैसा पूजा किया कल बता रहे थे, वो एक गांव है वहां पर आनियोर नाम, वो आनियोर गांव से 2 किलोमीटर दूर, 2000 मीटर दूर तक खाने के पहाड़ लगे थे। हमारे हॉस्पिटल में कितने लगते हैं यहाँ से इधर तक, कितने फीट हैं? 6 फीट, और 6 फीट में जो भोग लगाना है वो करते करते नाक में दम आता है, कितने दिन से बनाना पड़ता है उसको। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक गोल आपको बनाना है, इतना भोग लगाना है, इतना पर्वत के समान, तो कितना दिन तक मेहनत करनी पड़ती है उसकी। मैंने आपको बताया कि यहाँ से गेट तक लगाओ तो क्या करेंगे फिर आप? बोलेंगे यहाँ से मेरे घर तक लगाओ, बाद में बोलेंगे यहाँ से लेके मीरा रोड स्टेशन तक के एंड तक लगाओ, तो शायद आप सब लोग फेंट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के समय पे 2 किलोमीटर, अभी आज 2 किलोमीटर नहीं, बहुत 5-6 किलोमीटर जगह है, हम लोग परिक्रमा करते हैं ना, बहुत लंबा है वो, इतना सब पहाड़ लगाए थे लोगों ने, उसमें क्या था उन्होंने सार, सबका सहयोग। किसने ऐसा नहीं बोला ए, मैंने दूंगा, मेरे पास तो सामान नहीं है, तुम दे दो मेरे पास, भगवान बोल रहे तो क्या हुआ, मेरे पास सामान नहीं है, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा कल मैं, ऐसा किसी ने बोला नहीं, इसमें एक ने भी नहीं बोला ऐसा। आप बोल रहे क्या सभी पहाड़ बनाओ पहाड़ बनाओ, कहाँ सामान कहाँ से आएगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे, ऐसे एक भी प्रजाश्री ने नहीं बोला। सब लोगों ने अपने घर में जितना सब खा सब लगा दिया, बोला भगवान के लिए लगाओ। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है ये सोचकर, मैं पढ़ता हूँ उस कथा को और बताता भी हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे मन में आश्चर्य रहता हमेशा कि कैसे उनको शाम को क्या खिलाएंगे बच्चों को, उसका विचार मन में नहीं आया, शाम को क्या खिलाएंगे, कल क्या खिलाएंगे, ऐसा विचार कैसे नहीं आया होगा उसके मन में। बस बोल दिया तो सब लोगों ने पूरा भंडार खाली कर दिया, अपना पूरा स्टॉक जो साल का था ना, साल भर का गेहूँ भर के रखा था, साल भर का चावल भर के रखा था डब्बा में, सब खाली कर दिया पूरा, वो सब भगवान को पहाड़ में लगा दिया, पहाड़ के रूप में लगा दिया। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उसको 3 सेकंड में खा लिया पूरा, जिसको बनाने में इतने घंटे इतने हजारों लाखों लोग लगे, ऐसा खाट 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 3 सेकंड में पूरा खा लिया, खाली हो गया पूरा, 2 किलोमीटर खाली हो गया पूरा। ऊपर से बोलते आनी और आनी और आनी और दो और दो और दो, और कहाँ से देने का है, कुछ है ही नहीं, सब आगे भी सब खत्म हो गया, सब भंडार गोडाउन स्टोर हाउस सब खत्म, सब देख रहे क्या कर रहे हैं, तो कोई तुलसी का पत्ता लेके आया और दे दिया। तुलसी का पत्ता खाया, शांत हो गया। यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है, सब प्रकट किया दोबारा, जो खाया पूरा वहाँ पर प्रकट हो गया और सब लोग ने उसको खाया। भगवान को कोई चीज़ देने से कभी भी कम नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। हमको अभी तक विश्वास नहीं उसका, इसलिए हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं कितना देने का, कितना देने का। डोनेशन मांग रहे हैं, कितना देने का, 10 देने का कि 11 देने का कि 11.25 देने का। हम लोग का मन में, मेरे मन की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन की सोच रहा हूँ। मेरे को इतना दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी सोचता हूँ थोड़ा कम दे दो, बाद में फिर देखेंगे क्या करना है। सोचते रहते हम लोग ऐसा हमेशा, भगवान से भी बिजनेस करते रहते हैं, कितना देगा तो कितना मिलेगा, पगार बढ़ेगा क्या नेक्स्ट ईयर तो देंगे अभी भी, ऐसा होता है हमारा विचार। लेकिन भगवान को देने से कोई भी चीज़ कभी भी कम नहीं होती, कभी भी नहीं होती। वो औरत आई थी ना, फल लेकर आई थी नंद भवन में, कृष्ण भगवान को घर में बेचने के लिए आई थी, एक टोकरी में बेके फल लेके आई थी। तो छोटे से कृष्ण भगवान, उसमें बहुत छोटे से थे वो, एक लंगोटी पहन के घूमते थे, भाग भाग के आए, थोड़ा चावल में हाथ डाला ऐसा, दोनों हाथ कुछ दाने इकट्ठा किए और वो देने के लिए आ गए इसको, ताकि वो देके थोड़ा फल मिलेगा, ऐसा उस सिस्टम था उस टाइम पे। देखते थे मम्मी थोड़ा चावल देगी तो दो चार फल ले लेंगे उससे, तो कुछ दाने लिए और गए। उसका वो मधुर रूप देख के वो फल वाली इतनी मोहित हो गई, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, पूरा बास्केट दे दिया बच्चे को, ले बेटा ले। वो घर भागी और घर के भी स्टॉक भी लेके आऊँ, दे दो उस बालक को, इतनी मोहित हो गई बालक को देखे। और जब तक बालक वहाँ पर आया, सारे दाने सब खाद के गिर गए थे उसके, एक आध दो दाना बच गया था, वो लिया उसने बड़े प्रेम से, पूरा बास्केट फूल फल फूल का उसको दे दिया। घर पर जाके और भी लेके आई और दिन भर ढूंढती रही, और कुछ फल है क्या मेरे पास, और कुछ फल है क्या, सब ढूंढती रही, सब दिया उसने। और नेक्स्ट डे जब भी उसने मेरा बास्केट देखा तो बास्केट में पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा था, पूरा बास्केट के अंदर, जो बास्केट खाली किया था उसने। अगर वो सोचती ये सब दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, तो शायद बास्केट में जवाहरात नहीं भरते, क्योंकि उसे सोचा ही नहीं उसने, तो बास्केट क्या हो गया, हीरे जवाहरात से फुल हो गया। भगवान है ना, आपसे कभी भी कोई चीज़ फ्री में लेते नहीं। समझो आप किसी अमीर आदमी के घर पे गए और उसको हैप्पी बर्थडे के लिए आपने, वो बहुत करोड़पति अब्जोपति आदमी है, बहुत बड़ा बंगला है उसका, इतना जगह है उसके पास, 15 गाड़ी खड़ी है बड़ी बड़ी, और आप उसके बर्थडे में गए, उसको एक 5-star चॉकलेट दिया आपने, कितना रुपये का आता है वो, हाँ कितना रुपये का आता है, 5 रुपये का, तो आपने 5 रुपये का एकदम फर्स्ट क्लास चॉकलेट दिया, सर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो वो अंदर जाएगा और कुछ बड़ा चीज़ निकालेगा, सिल्क का कपड़ा निकालेगा, एक बैग अच्छी निकालेगा और ऐसे कुछ और निकालेगा, कुछ खाने का पैकेट निकालेगा, बोला ले ले। आपने कितना दिया, 5 रुपये का चॉकलेट, वो आपको कितना दे रहा है, क्योंकि वो करोड़पति आदमी है वो, आपने अपना प्रेम दिखाया, उसने फिर अपना रिस्पॉन्स दिया उसको, उसका रिस्पॉन्स आपके देने से कई गुना बड़ा होता है, क्योंकि वो है ही ऐसा आदमी, अमीर आदमी। ऐसा हमने भी अनुभव किया है, हमने भी कई अमीर आदमी को कभी अपना तरफ छोटा बड़ा गिफ्ट दिया है, लेकिन जब उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया ना, तो हमको शर्म आया कि हमने क्या दिया और हमने रिसीव क्या किया। ऐसा ही भगवान का, भगवान तो पूरे दुनिया के मालिक है, वो करोड़पति क्या है, करोड़पति तो कुछ भी नहीं है, तो दुनिया का हिसाब किताब है, नोट के हिसाब किताब, वो तो पूरी ब्रह्मांडों के मालिक है वो। उसको आप अगर कुछ फल देंगे थोड़े मोड़े इधर के उधर के, वो तो भगवान है, वो कभी भी आपसे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेगा। आप उनको भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, उसका फल आपको देगा वो, कभी भी उसको ऐसा नहीं कि कितना कितना रुपए का घी लगाया उसने दीपक में, ओके 5 रुपए का ना, ले 5 रुपए का उसको गिफ्ट दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा वो। आपने जो लगाया ना ऐसा घी का दीपक जलाया ना, उसके पीछे आपका प्रेम कितना है उसको वो ले लेगा पूरा। घी को नहीं देखेगा, असली घी था, नकली था, सस्ता था, महंगा था, किस दुकान से लाया था, वो सब सोचेगा नहीं। भगवान कितने प्रेम से चढ़ाया उसको देखेगा और आपको उसका फल देगा। एक बार नहीं देखा, एक बार कार्तिक महीने में आप एक दीपक उनको लगाएंगे तो जिंदगी भर उसका फल मिलते रहेगा आपको। बाय द वे हम लोग वहां से जा रहे थे, बाय द वे वो रति के लिए माता जी उनको मिली, वो बाय द वे बोली अरे तुम मंदिर में क्यों नहीं आते, अब जाहिर है यहाँ पर, तो 2 मिनट मंदिर में आ जाओ ना, कार्तिक महीना है, दीपक लगा लो। तो क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। दीपक रेडी है, घी का बाती भी रेडी है, उधर एक आदमी भी खड़ा है, वो मेनबत्ती लगा के खड़ा है, उससे लेने का, पहले जलाने का और घुमाने का, इतना ही काम है, 5 मिनट में हो जाएगा। तो उनका कहने से वो मंदिर में आएगा और थोड़ा घुमाएगा, हाँ प्रेम से देखेगा भगवान कितना अच्छा सुंदर सजा के रखा है उनको, करेगा निकल जाएगा। वो एक बाय द वे किए हुए दीपक का लाभ उसको जीवन भर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा उसका, इतने दयालु हैं वो। तो ये कहानी का क्या स्टोरी मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में गरीब से गरीब लोगों ने भी कोई परवाह नहीं किया कि कल क्या होगा। और आश्चर्य पता है, जब ये सब कुछ भोजन बनाया, अर्पण किया, दोबारा प्रकट हो गया, तो भगवान ने बताया कैसे बांटना है उसको, वो बांटा, वो खा के भी खत्म हो गया। और जब घर गए तो गोदाम में वैसे का वैसा सब अनाज, सब वैसे ही वैसा था, फिट, इधर कुछ कमी नहीं थी, सब भरे हुए गोदाम, गोदाम सब भरे हुए थे उनके। भगवान ने क्या देखा, अरे देखो मेरे कितने अच्छे भक्त हैं, परवाह भी नहीं किया कल क्या खाएंगे, तो मेरा फर्ज नहीं कि उनको खिलाने का। ऐसे अगर भक्त मेरे हैं जो कल की परवाह नहीं करते हैं मेरे सेवा के लिए, उनका देखभाल करना मेरा फर्ज है। भर दिया पूरा भंडार उनका भगवान, उनको भी ध्यान में नहीं आया कि खाली हुआ था। ये प्रेम है, प्रेम ऐसा होता है, जब प्रेम से हम भगवान की सेवा करते हैं ना, तो उसका फल जो है ना अनगिनत होता है, उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसको नोट में नहीं गिन सकते हैं कि भाई कितना पगार बढ़ा, ऐसा नहीं गिन सकते उसको। लेकिन जो आपको मिलेगा वो गिनती करने के परे रहेगा। इसलिए हम लोग अस्पताल में ये गोवर्धन पूजा, ये जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, क्या मतलब है उसका? हम लोग मंदिर में तो करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को अलग से भगवान की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए करते हैं। चलो आप गरीब होंगे, आपके पास कभी 2 रुपया ही होगा रोटी बनाने के लिए, चलो 2 रुपये की रोटी आपने भगवान को भोग में लगाया गोवर्धन पूजा में, उसका लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी तरफ से आपने प्रेम से कुछ ना कुछ उनको अर्पण किया है, और वो स्वीकार करेंगे उसको। वो ये नहीं बोलेंगे अरे कि मैं तो वैकुंठ का राजा हूँ, ये क्या चपाती है, दुनिया की चपाती नहीं चाहिए मुझे, मैं तो मेरी रुक्मिणी के हाथ का खाता हूँ, ये सब फेकार खाना है, फेंक दो इसको सब, सब इतना फालतू खाना लेके आते घटिया, वो शरद पवार ने वो तो सड़ाया था गोदाम में, वो तुम लोग लेके आते हो, उसकी रोटी बना के मुझे खिलाते हो, क्या समझते हो मुझे आपको, मैं भगवान हूँ, मालूम है क्या आपको, ज़िंदगी मैंने आपको दिया है, दुनिया मैंने आपको दिया है, मेरे को एक रोटी खिलाते हो, क्या तुम समझते हो मेरे आपको, ऐसा नहीं बोलते कभी भगवान। ये हम लोग और आप लोग बोलते हैं, क्या उसके घर पे गया था मैं, क्या खाना खिलाया उसने, जब मैं मेरे घर पे आया तो कितना अच्छा खाना खिलाया था उसको, क्या उसका बराबर खाना खिलाया नहीं उसने मुझे, ऐसा हम लोग घर में आके डिस्कशन करते रहते, क्या सब्जी था वो मज़ा नहीं आया बहुत, वो था ना वो बहुत घटिया था, रात को 10 बजे के बाद में खरीदा हुआ माल था पूरा, ऐसा हम लोग बोलते हैं घर में आकर डिस्कस करते। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते कभी भी, अरे सुदामा के हाथ में सड़ा हुआ पोहा था, मालूम है क्या आप खाएंगे सड़ा हुआ पोहा? अब बोलेंगे हम लोग भक्ति विदान के वार्ड बॉय हैं, हमको सब मालूम है अच्छा बुरा क्या होता है, ये अच्छा नहीं हेल्थ के लिए, हम लोग नहीं खाएंगे। लेकिन विश्व का मालिक भगवान, वो फटा पुराना कपड़ा भैया, जिसके कपड़े के अंदर होल ज़्यादा कपड़ा कम था, उसको दरबार में रोका था, ये तो कौन है? तो बोला मैं भगवान का बचपन का मित्र हूँ। तो देखा उसका हुलिया, वो बड़े मित्र भगवान के हो, उसने वहाँ से पुकारा, क्योंकि वो वॉचमैन ने उसको अंदर जाने नहीं दिया, बोला ऐसा थोड़ी भगवान का मित्र होता है, हमारे भगवान तो भगवान है, द्वारकाधीश है, ये कौन फटेचर आदमी आया गाँव के, सब लोग भगवान का मित्र बन के आते हैं, चलो हटो यहाँ से। तो उसने वहाँ से आवाज़ लगाई, तो आवाज़ सुनी उन्होंने, दरबार में बैठे थे सिंहासन में मस्त मंत्री कणों के बीच में, जैसे सुना अरे मेरे बचपन के मित्र की आवाज़ है ये, कहाँ है वो? तो भागने लगे वहाँ से, सब देखते क्या हो गया भगवान को, भागने लगे वहाँ से, सीढ़ियाँ उतर के ऐसे ऐसे तरह से आए, सही थे बरबार के भाग के बाहर करके गेट के पास गए, भाग के सुदामा सुदामा करके गले लगाया उसको, वॉचमैन को फेंट हो गया वो पूरा, अरे अभी तो सोचा था मैंने ये तो गाँव का आदमी फटीचर, अभी तो भगवान भाग के खुद नंगे पैर आके गले लग रहे उसको, यहाँ तक गले लगने, वो गले लगते लगते उसको गले लगा के लेके गए अंदर, यहाँ तक नहीं रुके, उसको जाके अपने सिंहासन में बिठाया, उधर तक भी नहीं रुके, रुक्मिणी पानी लेके आओ, पैर धोया उसको, यहाँ तक नहीं रुके, बोले रुक्मिणी फल लेके आओ, फल खिलाया उसको, सिंहासन में बिठा के पैर दबाया उसके, तो मालूम पड़ा ये जो फटा पुराना आदमी ना ये बहुत बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, क्योंकि वो कपड़े से बड़ा नहीं था, भगवान ने उसको अपना मित्र करके स्वीकार किया था, इसलिए बड़ा आदमी बन गया वो, उसके कपड़े 2 रुपए के नहीं थे, उसके गले में कुछ था नहीं, फिर भगवान ने क्या बोला, इधर तभी भाभी कुछ लेके नहीं आया, भाभी के साथ भाभी ने कुछ दिया नहीं क्या? तो वो छुपा रहा है ऐसा, बोले उसको पता है ना, 3 दिन चल के आया तो पोहा सब सड़ गया, उसको मालूम है, अभी कैसे दिखाऊंगा उसको? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले सुदामा छुपाने का नहीं, हाँ मुझे जानता हूँ, कुछ ना कुछ भाभी ने दिया होगा तुमको। तो भाभी ने क्या किया था, जब ये निकले वहाँ से अपने फ्रेंड को मिलने के लिए, सुदामा की पत्नी ने बोला अरे तुम इतने बड़े मित्र को मिलने जा रहे हो, कुछ तो कुछ लेके जाओ। सब घर में ढूंढा, कुछ नहीं, एक बर्तन में एक अनाज नहीं, एक फल नहीं, एक कुछ भी नहीं, सब खाली ठंडनाट, 3 दिन से भूखे हैं। फिर पड़ोस में गई और थोड़ा सा पोहा उधार लेके आई, जब लौट के आएंगे ना तो वापस कर दूंगी, ऐसा पोहा करके उसको बांध के दिया, उधारी का पोहा। और वो भगवान ने सुदामा को पकड़ा ऐसे, ऐसा पीछे जाके उसके छीन लिया उसको, ऐसा खोल दिया गांठ उसकी, वो डाला मुंह के अंदर। रुक्मिणी बोले अरे मत खाओ मत खाओ, सड़ा हुआ है। भगवान कहाँ ढूंढ सुनने को तैयार है वो, एक बार दो बार तीन बार, बाद में हाथी पकड़ लिया उसने, बोले ये इतना 3 बार खाया ना आपने, पूरा वैकुंठ उसका हो गया, इतनी कृपा हो गई उसके ऊपर, बस हो गया अभी। तो घर लौट के आया ना वो, जब ही वो सोच कर नहीं आया था कि भगवान को मैंने पोहा दिया उसका बदले में क्या दिया, सोच के नहीं आया वो, उसके मन में इतनी खुशी थी कि भगवान मुझे मिले, इतने दिन के बाद मेरा दोस्त मुझे मिला, वाह क्या बात है, हाँ इतना प्रेम से बात किया। ये नहीं बोला मुझे आश्रम में बिठाया, मेरा पैर धोया, इसका उसको इम्पोर्ट नहीं था, मेरा दोस्त मुझे मिला, कितनी बचपन की यादें निकाली, कितना खुशी हुआ दिल में, वाह मज़ा आ गया बहुत। घर पे आया अपने उसी घर उसी एरिया में आया तो बड़ा महल खड़ा है उधर, तो बोला आइए सब आइए आइए आइए, स्वामी स्वामी नाथ आइए आइए एंड। तो बोले ये इधर कहाँ लेके जा रहे हो, मेरा घर नहीं, मेरा घर झोपड़ी में। नहीं सब आपका ही घर है ये। अच्छा पकड़ के लेके गया उसको, उतने में उसकी पत्नी आई, पूरा कपड़ा पहन के एकदम, जो गरीब थी एकदम कांपती थी भूख के वजह से, एकदम पतली सी एकदम ऐसी, वो एकदम पूरा जरी का कपड़ा पहन के, अलंकार पहन के, हीरे का दागिना पहन के चमक रही है पूरा। बोले स्वामी नाथ आइए आपका स्वागत है। बोले मेरी पत्नी क्या? हाँ तुम्हारी पत्नी। ये सब क्या है, पीछे सैकड़ों दासियाँ खड़ी है, वो भी जेवर पहन के दासियाँ खड़ी हुई है, और कई सारे कमरे हैं उसके अंदर, कई सारे गोदाम भरे हुए, सब सारे फर्नीचर है उसके अंदर, क्या क्या है खाने के लिए। बोला स्वामी थक के आए होंगे, गर्म पानी स्नान कीजिए, मैंने अभी अभी चंदन अगुरु का जल बनाया आपके लिए, गुलाब जल, अच्छी तरह स्नान करके आपके लिए मसाज करेंगे तेल लगा के, और आपके लिए मैंने अभी 56 आइटम तैयार रखे हैं, आप आके खाना करो 56 आइटम। तो पोहा तो उधार से मंगा था, उसका क्या हो गया? बोले नहीं ये सब प्रकट हो गया भगवान की दया से, यहाँ पर भगवान ने सब भेज दिया, दासियों को भेजा, सब कुछ भेजा, गोदाम भरे हुए हैं, अभी कोई कमी नहीं किस चीज़ की। वो समझ गया, सड़ा हुआ पोहा खिलाया, वो क्या दिया देखो रिटर्न के अंदर, ऐसे हमारे भगवान। लेकिन इतना सब महलों का समृद्धि संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद भी कभी भी सुदामा उसमें आसक्त नहीं हुआ। जो पहले भक्ति थी भगवान की, प्रेम की भक्ति थी, वही को हृदय में बैठ के उसने अपना जीवन बिताया, उसी तरह रहा वो जैसे पहले रहता था। खाना पीना खाया उसने बाद में, भूखा नहीं रहा हो, लेकिन उस ऐश्वर्य का भोग नहीं किया। अरे वाह वाह अभी 15 कमरे हो गए, अभी कितना मजा, एक दिन में एक कमरे में सोऊंगा, एकादशी में वहाँ सोऊंगा, द्वादशी को वहाँ सो जाऊंगा, दशमी में वहाँ सो जाऊंगा, हाँ दशमी को ब्लू चादर ले लूंगा और एकादशी को रेड चादर ले लूंगा, ऐसा कुछ सोचा नहीं उसने। चलो मजा कर लो, अभी मिल गया है तो छोड़ो मत अभी उसको, ऐसा हम सोचेंगे। वाह बहुत दिन के बाद में ऐश्वर्य मिला है, पैसा मिला है, चलो एंजॉय कर लो एंजॉय कर लो, अभी कब आगे मिलेगा पता नहीं, जब तक अभी अपना लॉटरी लगा है ले लो। भगवान का भक्त होता है ना वो सेम रहता है, कभी भी संपत्ति में सेम रहता है और गरीबी में भी सेम रहता है, उसका दिल जो है ना वो कभी बदलता नहीं। हम लोग को यही सीखना है। ये गरीब की कहानी है, ये अमीर की कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, गरीब से गरीब आदमी की कहानी बता रहा हूँ। जो गरीब आदमी इतना बड़ा धन दौलत मिलने के बाद भी वो बदला नहीं कभी, वैसा ही रहेगा वो, क्योंकि उसको पता था कि ये महल में खुशी नहीं है, ये हृदय में भगवान के जो भजन करता हूँ ना उसमें खुशी है, इसको मालूम था इस बात का, और उसकी वजह से ये सब प्रकट हो गया है। लेकिन समय के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जब तक रहेगा तब आनंद और खुशी नष्ट नहीं होगी, ये उसको पता था, इसलिए वो कभी भी आसक्त नहीं हुआ। तो अमीरता क्या है और गरीबी क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है। अमीर आदमी वो है जिसके हृदय में भगवान है, जो समझ चुका है कि हृदय में भगवान है। गरीब आदमी वो है जिस पास करोड़ों का धन है लेकिन वो जानता नहीं कि भगवान क्या चीज़ है। वो इतना सब होने पर भी गरीब आदमी है, गरीब। सच्चा धन जो है वो भगवान के नाम का है, भगवान के भक्ति का है। वही भक्ति का धन जो है वो देखकर भगवान पागल हो गए थे, इसलिए सब खाया, दोबारा प्रकट किया और घर में भी धन धान्य से भंडार भर दिया उनका। उन्होंने इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, देखो आप। अरे क्या अभी बालक नहीं बोला इसलिए इसके पिताजी ने प्लान बदली कर दिया। क्या बालक है ये, क्या बकबक करते रहता है। वो बड़े बड़े बुजुर्ग मान जाते हैं, कैसे लोग हैं ये लोग, समझते नहीं क्या इंद्र की पूजा करनी चाहिए, इंद्र ने बंद कर दिया, देखो कितनी वर्षा हो रही है अभी, ये बालक का सुना इसलिए। ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, हम लोग बोलते थे इसके कहने से हमने पूजा बदली किया, देखो क्या हो रहा है अभी, सब घर भर बच्चे सब गायब है, सब भय के जा रहे हैं। मत सुनो इसका, एक बार सुन लिया बहुत हो गया, आगे मत सुनो, दोबारा गलती मत करो। कोई नहीं बोला ऐसा। दोबारा जब गाय बैल सब भय के जा रहे हैं, घर भय रहा है, तो उसी को पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो बचाओ, कृष्ण कहां पर हो। तो वही कृष्ण आता है, बोलता है चलो मेरे पीछे चलो। तुमने ऐसा नहीं बोला, अब कहां लेके जा रहे हो, तुम्हारे कहने से ऐसा बोला तो सब वर्षा होकर नष्ट हो गया, अभी कहां लेके जा रहे हो। नहीं, उसके पीछे गए, कितनी विश्वास और श्रद्धा है उसके पीछे, उसी के पीछे चले गए। और पता नहीं कहां लेके जा रहा है, जा रहे सब लोग पीछे उसके, वर्षा हो रही घनघोर। तो उसके बाद में क्या हुआ, गिरिराज गोवर्धन के पास ले गया वो। अभी क्या करेगा मालूम नहीं, आपको मालूम है, मालूम है क्या? अरे हाँ बोलो ना, सबको मालूम है ना क्या हुआ आगे। बच्चा बच्चा जानता है, नाटक बनाते हैं तो बच्चों को मालूम होता है क्या होने वाला आगे। सब जानते हैं कि अभी गोवर्धन को उठाएगा, सब डरमा बोलते अभी देखो अभी देखो अभी को अभी उठाएगा अभी उठाएगा। उनको पता नहीं था कि वो उठाने वाला है, उनको केवल श्रद्धा थी कि कुछ ना कुछ करेगा और वो बचाएगा हमको, इतनी श्रद्धा थी। आज आप सबको मालूम है, उस समय किसी को पता नहीं था, फिर भी श्रद्धा से उसके पास गए, देखा चमत्कार उसके आंखों के सामने, जैसे कोई छतरी उठा ना छतरी, वैसे उसने पूरा पहाड़ को उठा लिया। यकीन नहीं हो रहा है लेकिन उठा लिया उसने, 7 दिन 7 रात पकड़ के रखा उसको। हाँ सोचो आप, क्या भगवान है हमारे। इंद्र का सबसे बड़ा पावर था ना प्रलय का, बोला जाओ वर्षा करो, जला दो, उड़ा दो सबको, बहा दो, खत्म कर दो सबको, मैं आ रहा हूँ पीछे से, वर्षा करो जितना पानी है उतना सब। बोला साहब प्रलय का टाइम नहीं हो गया अभी, बोला कोई सुनने का टाइम नहीं मेरे पास अभी, झोला बोला वैसे करो। बोले प्रभु स्वामी अभी तक टाइम नहीं हुआ है नष्ट करने का, टाइम बाकी है उसको, अभी करो, मैं बोल रहा हूँ ना अभी बरसाओ। तो गए बेचारे बरसा रहे, मतलब इंद्र का सबसे बड़ा पावर जो है ना वो दिखा रहा था वो। भगवान ने क्या, बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ में उसको डिफीट कर दिया उन्होंने, ये उंगली से उठाया पूरा और 7 दिन 7 रात उठा के रखा। इंद्र का बादल भूल गया, साफ पानी खत्म हो गया, टैंक खाली हो गए पूरे, अभी क्या करना है। तब इंद्र के होश में, अरे जब ये टैंक खाली होने पर भी कुछ नहीं होता है तो वो भगवान ही हो सकते हैं, अरे मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने इनको पहचाना नहीं। अब ये गरीब लोग जो हैं गांव के, उनको श्रद्धा है यही बचाएगा। और वो देवों का राजा देवेंद्र जो है, उसको सारी इज्जत दौलत अप्सरा सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है कि ये भगवान है। कौन अमीर है बताओ, इसके पास सब कुछ है लेकिन जानता नहीं है कि ये लड़का जो है भगवान है। और ये गांव के लोग हैं, इसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो जानते हैं कि ये भगवान है, तो अमीर कौन हो गया बताओ। पाँव पड़ने को आया नीचे वो आदमी, भगवान ने देखा भी नहीं उसकी मुड़ की ओर, मुड़के भी दिखा नहीं उसको, ऊपर चला गया डर के मारे, इतना गुस्से में है कि देखने को तैयार नहीं, मुझे माफ़ क्या करेंगे, हिम्मत ही नहीं हो रही मुझे सामने जाने की। गुरु के पास गया, गुरु बोला हरे कृष्णा थैंक यू, मेरे पास मत आओ, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा के पास गया, पैर पड़ा उसके, बोला ब्रह्मा जी क्या करूं अभी, भगवान को पहचाना मैंने आखिर में, अभी गड़बड़ कर दिया पूरा मैंने। तो बोले एक गाय के पास जाओ, उनकी भक्त है ना गाय, उसके पैर पकड़ो। इतना बड़ा देव का राजा था वो देवेंद्र राजा, वापस आया जमीन पर और गाय के पैर पड़ा, लगाए देवी गो माता, जरा हमारा सिफारिश करो, कुछ करो हमारे लिए। तुरंत गाय लेके गई। गाय जब लेके गई तब पहली बार उसके ओर मुड़के देखा भगवान ने। भगवान को क्या वैल्यू है तुम्हारे पैसे की, ये तुम्हारी इंद्र पोजीशन की, तुम्हारा देवेंद्र राजा है, तुम देवताओं का राजा है, बड़ा आदमी है, हू केयर्स, मैंने तो तुमको बनाया सब कुछ, ये तो मेरा ही तो पावर तुमको दिया था मैंने, तुमने मिसयूज किया उसको, तो मेरा ही था, मैंने दिया था उसको, मेरे ऊपर चलाया तुमने। हाँ बहुत होशियार बनते हो, इंद्र बनते हो, मेरे होशियार दिखाते हो। हाँ नहीं देखा, जब गाय ने सिफारिश किया तो माफ किया उसको। तब कुछ उसने अर्ज किया, भगवान गलती हो गया जरा माफी करो, वापस नहीं करूंगा, ऐसे वैसे बहुत प्रार्थना किया, बोला ठीक है अगली बार नहीं करना। तो कौन अमीर हो गए बताओ, जो उनके साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, मजा करते हैं, नदी में कूदते हैं, वो अमीर है? गरीब लोग गांव के कि राजा बैठा है सिंहासन पे इंद्र के दरबार में, वो अमीर है बताओ? उसको तो भगा दिया ऐसे, यहाँ वापस आ रहा नहीं है बच्चों के बीच में, जब मैं खेलता हूँ ना डिस्टर्ब नहीं करना मुझे, ऐसे करके भगा दिया। ये वाक्य भगवान ने लिखा है एक शास्त्र में, वो कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था तो इंद्र ने वर्षा करके डिस्टर्ब किया हमको, हमारे खेल में उन्होंने व्यवधान किया, मुझे अच्छा लगता नहीं ये सब, मुझे ये बालकों के साथ खेलने में अच्छा लगता है बहुत, मुझे खेल में रुकावट पड़ने से बहुत तकलीफ होती है, और ये ब्रह्मा श्री इंद्र आदि आते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे भगवान ने लिखा है। शास्त्र का नाम है बृहद भागवतामृता, उसमें लिखा है भगवान ने, मतलब वो भगवान जो है ना वो देवताओं की भी परवाह नहीं करते लेकिन अपने भक्तों के साथ में खेलते हैं, वो गुल्ली डंडा खेलते हैं, गेंद खेलते हैं, पानी में कूदते हैं, कुछ जूठा खाते हैं, क्यों? प्रेम, प्रेम की वजह से। तो वो प्रेम वो हमको भी देना चाहते हैं सेवा के माध्यम से, इसलिए हम गोवर्धन पूजा को मनाते हैं, ताकि हमको सेवा का मौका मिले और हमारे हाथ की रुकी सुकी प्रेम से भरी हुई रोटी या प्रसाद या भोग जो खाएंगे तो उनको बड़ा आनंद आता है। वो नहीं कहेंगे कि क्या है तुम फालतू माल दिया मुझे, ऐसे नहीं बोलेंगे, तो प्रेम से दिया ना खाएंगे। आपका बच्चा जब भी आपको बर्थडे को एक 5 रुपए का गोली ला के देता है, हैप्पी बर्थडे पापा बोलते हैं, तो आप उसको ऐसा बोलते हैं क्या, क्या बड़ा काम किया तुमने, ये रुपया मैंने आपको दिया था ना वो दिन दिया था ना, क्या बड़ा काम किया, मेरा ही पैसा, मेरा ही तू, जन्म में मैंने तुमको दिया है, ऐसा बोलेंगे आप क्या? आप बोलेंगे अरे 5 रुपए मेरा हो तो क्या हुआ, प्रेम तो बच्चे का है ना, वो तो खुद का है, वो तो मेरा नहीं है, वो तो अपने हृदय से उसने निकाल के दिया है मुझे प्रेम से। वो प्रेम को आप देखेंगे और आइटम कितने रुपए का वो देखेंगे नहीं, तुरंत बच्चे गोले लगा के चुम्मा लेंगे उसका, क्योंकि आप वो चॉकलेट नहीं देख रहे हैं, आप प्रेम देख रहे हैं। वैसे ही हमारे भगवान तुम क्या दे रहे हो वो नहीं देखते, कितना प्रेम से दिया है वो देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरे गरीब बच्चे इनके पास क्या है, वो भी दिया मेरा ही दिया हुआ है, क्या बड़ी बात है, वो देखते नहीं है, वो प्रेम कितना है वो तुम्हारा खुद का है वो देखते हैं, उसको उसी को स्वीकार करते हैं, उसको वो स्वीकार करते हैं तो हम अमीर बन जाते हैं, हृदय से अमीर बन जाते हैं। इसलिए मेरी आपको विनती है कि आप लोग गोवर्धन पूजा में जो भी आपकी शक्ति है, हाँ हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि 1 करोड़ का माल लेके आओ, भगवान को अर्पण करो, उनके बराबर का हिस्से का उनका उनके लिए अच्छा लगेगा 1 करोड़ का माल, सब मिलके भी 1 करोड़ नहीं होगा शायद, इम्पॉसिबल है वो, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करते हैं। आपका प्रेम का भेंट जो है स्वीकार करते हैं, खाते हैं वो प्रेम से, और आपको अपना प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ देते हैं, चिंता से दूर करते हैं आपको। इसलिए जो भी आपकी शक्ति हो, जो भी क्षमता हो, प्रेम से बना के लेके आओ भगवान के लिए। एक आदमी कम से कम एक आइटम लेके आओ, आपका डिपार्टमेंट जो बना रहा है वो तो उसमें सहयोग करो, लेकिन अपनी बीवी बच्चे को भी लगा दो, एक एक आइटम भगवान के लिए अर्पण करने के लेके आओ, उसमें कंजूसी मत करो, भगवान को प्रेम से अर्पण करो, फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है आपके जीवन में, क्या बदलाव आता है, आप खुद ही देख लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, खुद ही अनुभव करो और अमीर बनो हृदय से। हाँ गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाने के बाद में कोई ब्रजवासी गरीब नहीं रहा, अरे इतना खर्च किया तो गरीब हो गया, वो लोन में गया वो अभी, हाँ दिवाला निकला उसका, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिवाली में गोवर्धन पूजा आती है, बोलेगा अच्छे भगवान भी अच्छे, दिवाली में आके सारा दिवाला लूट लेते हैं हमारा पूरा, हमको कंगाल बना देते हैं, हाँ ऐसे भगवान है, दिवाली में पूरा ख़त्म करते पूरा, ऐसा नहीं होता कभी, जो भगवान को देता है उसका कभी नुकसान नहीं होता है। इसलिए सारे उत्सव जो है बड़े प्रेम से मनाओ, हृदय से मनाओ, हाँ एक रुकी सुकी उसको खिलाओ लेकिन प्रेम से खिलाओ भगवान को, फिर देखो जीवन में क्या परिवर्तन होता है। इसलिए प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है भगवान के लिए, भगवान के लिए और कुछ चीज़ बड़ी बात नहीं है। वो बोलते हैं वैकुंठ में सब कुछ मिलता है मुझे, लेकिन ये गोपियों का छाछ पीने के लिए मैं ये तो जन्म लेता हूँ और चोरी करके खाता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। द्वारका में बहुत है, वैकुंठ में बहुत सारा है, उनके पास हजारों लक्ष्मियाँ, हाँ लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे करोड़ों गोपियाँ जो है, लक्ष्मियाँ जो है उनको खिलाती रहती है। उधर इतना दौलत है उनके पास, बोलते वो छोड़ के मैं ये गांव के औरतों के हाथ का मक्खन चुराने के लिए आता हूँ और मार खा के दंड लेके भी उनका मक्खन चुराता हूँ, बोले इसी के लिए आया हूँ इधर, मैं नाचता हूँ, वो ताली बजाते हैं और मैं नाच करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा माखन देंगी वो, उसके बाद में पूरा देती नहीं है, थोड़ा देती है, बोलती है और चाहिए और नाचो, फिर कंगन बजाती है, ताल बजाती है, घुंघरू बजाती है, बोलते नाचो, फिर नाचता है, फिर दोबारा फिर थोड़ा सा निकाल के देते हैं, फिर खाते हैं, बोले और मिलेगा, और नाचो और नाचते हैं। वैकुंठाधिपति है वो, अखिल ब्रह्मांड नायक जगत के नाथ है वो, सब कुछ उनका, उनका मक्खन भी उनका ही है, लेकिन उनका प्रेम का स्वाद चखने के लिए आते हैं वो, बालक बन के आते हैं, उनके आंगन में रेंगते हैं, कितने प्रेमी भगवान है वो, है ना, सब कुछ छोड़ कर आते हैं, बोले नहीं मेरे भक्तों का प्रेम चाहिए मुझे, वैकुंठ को छोड़ के आते हैं, लक्ष्मी को छोड़ के आते हैं और उनके आंगन में डोलते हैं, गोबर में खेलते हैं, गोमूत्र में खेलते हैं। ऐसे हमारे भगवान हैं, प्रेमी भगवान, क्या कमी हमारे लिए बताओ, खाली हमारे प्रेम की कमी है बस, वो हमारा प्रेम उनके लिए आ गया, जीवन धन्य हो गया, सब कुछ जीवन में जो चाहिए, चिंता विंता थी सब भाग जाएगी, और जहाँ पर भी आप हैं, गरीब गरीब कैसे भी रहेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। बोलो कृष्ण भगवान की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, थैंक यू वेरी मच।